Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
हम आपको बताएं, एक बार अमृतसर में झगड़ा हुआ। हमें वहां से टेलीग्राम आया कि झगड़ा हुआ है, आप फौरन आइए। मैं गया और जो ब्रिजमोहन भाई हैं, उनके लौकिक पिता थे उन दोनों आनंद जी, हम दोनों वहां गए। जब तक हम पहुंचे बात काफी बढ़ चुकी थी और झगड़ा काफी बढ़ गया था। तो वो हम जब पहुंचे, अभी सामान हमने अंदर रखा बड़ी मुश्किल से, तो बाहर देखा काफी लोग इकट्ठे हुए हुए। और जब तक हम उसका कोई इंतजाम करें, किसी पुलिस स्टेशन पर जाएं या कुछ आपस में विचार करें कि क्या हमें करना चाहिए, लगभग कोई 1,000-1,500 आदमी इकट्ठे हो गए। और वो यही कह रहे थे कि इनको यहां से हटाओ, ये हमारी सभ्यता से कोई अलग किस्म की बात करते। एक कोई गीत बज रहा था, उन दिनों में ये गीत तो बने नहीं थे, वो जो पहले वाले गीत थे उन पर हम अपना ज्ञान सुनाते थे। कोई गीत भी बज रहा था, किसी बहन ने बजा दिया था, तो वो उसको और ज्यादा चिढ़ गए थे कि ये क्या गीत बजते हैं, किसी धार्मिक संस्था में ऐसे गीत थोड़ी बजा करते हैं। तो वो इकट्ठे हो गए सब लोग और हम दोनों गए पुलिस स्टेशन पर। वो एक पुलिस स्टेशन पर, हम दूसरे पुलिस स्टेशन पर। जल्दी से वैन ले आए, लोगों को बुला के ले आए। तो इसी बीच में हमने देखा कि वो सब इकट्ठे हुए हुए, जब तक पुलिस वाले पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, सब ने कहा कि जी इनको निकालो, आज इनका सामान बाहर फेंको और किसी ट्रक में डाल के जाके दिल्ली कमला नगर में पहुंचा के आओ। दे हैड दैट काइंड ऑफ प्लान। तो हालांकि वो जो बहनें थी, उन्होंने, मम्मा वहां गई हुई थी, उन्होंने सोचा कि ये लोग बहुत इस समय ऐसे इरिटेटेड मूड में है, तो क्या किया जाए। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जब बंद किया तो कुछ लोग जो बहुत इस किस्म के थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, धक्का देके दरवाजा गिरा दिया। गिरा के, हालांकि उनको ये मालूम है कि सब बहनें अंदर हैं और बहनों पर इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन जब मनुष्य को क्रोध आता है, घृणा के उस आवेश में होता है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और वो गिरा के अंदर चले। और फिर उन्होंने उस दो चार जो उनके मुखिया थे, उनको कहा कि इनकी मातेश्वरी से जाके बात करो, उनको कहो कि या तो हम निकालेंगे और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही चले जाएं तो अच्छा। तो 2-4-5 को उन्होंने भेजा बात करने के लिए। वो गए अंदर, मम्मा को उन्होंने फर्स्ट स्टोरी में बिठा रखा था, तो मम्मा बैठी थी। तो कहाँ है मम्मा, वो इस कमरे में, उस कमरे में, सब कमरे में ढूंढने लगे। देखा मम्मा तो है नहीं, लेकिन ये तो उनको मालूम था मम्मा वहां है, तो वो चल गए ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर। वहां पर देखा तो मम्मा तो योग में बैठी हुई थी, तो जाके बैठ गए चुप करके। तो मम्मा को देखते रहे, मम्मा भी उनको देखती रही, वो भी बैठे रहे, मम्मा भी बैठी रही, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द। और फिर कुछ देर जब बैठे रहे चुप करके, क्या उनको महसूस हुआ, वो वहां से उठ के वापस चले गए। वापस जाके जो बाहर लोग खड़े थे इंतजार में कि कुछ फैसला करके आएंगे, आज इस बात का रोज रोज झगड़ा होता है, तो वो सब सोच रहे थे कि कुछ निष्कर्ष लेकर आएंगे। जब वो वहां से गए तो कहते हैं, भाई क्या फैसला हुआ, कहते हैं जी इनकी मम्मा जो है, ये भले खराब है ब्रह्मा कुमारी, लेकिन इनकी मम्मा जो है उसमें कोई खराबी नहीं, ये हम आपको कह सकते हैं कि वो साक्षात देवी है, आप में से किसी ने देखना हो तो जाके देख लीजिए। तो सब लोगों ने सोचा कि ये भी उनके सामने गया जादू, इसको इनको भी लग गया, हम जाएंगे हमको भी जादू लग जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि ये है तपश्चर्या का फल, और साथ साथ मम्मा का जो व्यक्तित्व था, जो संस्था का बड़े से बड़ा विरोधी हो, मुझे जीवन में इस बात का अनुभव है, वो तब तक विरोध करता होगा जब तक वो मम्मा या बाबा के प्रैक्टिकल सामने नहीं आया होगा, या उससे ज्यादा आगे अगर उसने बात नहीं की होगी। लेकिन अगर उसने वो सामने चला गया होगा या थोड़ी बात भी कर ली होगी, तो ही मस्ट बी ए चेंज पर्सन, वो अवश्य बदल गया होगा। तो यही एक तपश्चर्या का फल है, सबसे बड़ी जो सेवा है। दिल्ली में मुझे याद है बाबा जब आए एक दफा, तो हम लोग बसेस में सब जाते थे वहां क्लास करने, एक जगह सबकी दिल्ली की क्लास होती थी। तो दिल्ली में एक भाई थे, वो जो अपने युगल को नहीं आने देते थे, झगड़ा करते थे, और उनको जब मालूम हुआ कि दिल्ली में बाबा आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे वहां बाबा से मिलने। तो उन्होंने आके सेंटर पर कहा कि ये जाना चाहते हैं, वहां जाके झगड़ा करेंगे, सभा में उधम मचाएंगे, बाबा के सामने बैठेंगे, खलबली मचाएंगे, तो इनको किसी भी तरह से रोका जाए। तो वो जो बस आती थी, वो बस में सबसे पहले ही उस दिन नहा धो के बैठ गए। तो आप उनको उतारा कैसे जाए, झगड़ा के बिना उनको कैसे निकाला जाए। उनको कईयों ने परसुएट करने की कोशिश की कि भाई ये जो डेली स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास होती है, वही समझ भी पाते हैं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको बाबा से वैसे मिला देंगे, अभी आपके चलने का कोई प्रयोजन नहीं। वो माने नहीं, वो बैठ गया वहां, बैठ गया तो सबको लेट हो रहा था। वहां पहुंचे तो वो सभा में बैठ गया और वो आगे आगे बढ़ता जाए बाबा के नजदीक जाके बैठने के लिए। हम लोग सब इस बात में कि कहीं नजदीक जाके तमाशा ना करे, इसको पीछे बिठाना चाहिए, लेकिन वो रुके ही ना, जाके सेकंड या थर्ड रो में नजदीक ही बाबा के बैठ गया। लेकिन उसने सभा में कुछ नहीं बोला। सभा के समाप्त होने के बाद इतना खुश, इतना वो उसके जीवन में, लाइफ में चेंज उसके, और बोलता है कि आप लोग कमबख्त हो, अपनी वाइफ को सबको कहता है आप लोग कमबख्त हो। तो उन्होंने कहा क्या बात है। कुछ लोग जो नए थे जिनको मालूम नहीं था ये कौन है, तो उन्होंने समझा क्लास में तो सब बीके जाते हैं, ये क्या कहता है, क्या भाषा बोलता है। तो कहता है आप सब लोग कमबख्त हो, आपने बाबा से मुझे इतने बरस तक मिलने तक नहीं दिया और लोग मुझे कई बातें कहते रहे इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। अगर एक दफा भी पहले मुझे मिलने दिया होता, मेरी बाबा से बात भी ना होती। अरे इतने बरस में, इतनी उम्र में ये जिस तरह से सीधे बैठते हैं, जितना इनके चेहरे पर प्रकाश है, जितना इनकी वाणी में एक मधुरता और एक लज्जत है, सुनने से ही मन को लगता है कि हमारी प्यास बुझती जा रही है। ऐसा व्यक्तित्व कभी किसी संसार में किसी का है, आप मुझे बताइए। अंधे से अंधा मनुष्य भी आया तो उसको यहाँ निगाह मिल जाए, आंखें मिल जाए, इनको देखकर कौन इनका विरोध करेगा। आपने हमें मिलने तक नहीं दिया इनसे, आज भी मुझे रोक रहे थे कि आप वहां मत जाओ मिलने के लिए, वो इस तरह से बोलता था। तो हमारे जीवन में ये अनुभव है कि जो बाबा या मम्मा से मिला, मैं समझता हूँ हाल में भी जो लोग आके यहाँ बैठते होंगे, कभी इस बात का आप कईयों से पूछें कि आपको कैसा लगा, चित्र भी जो देख लेते हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि यूनिवर्सल है। विदेश के लोग तो आके अपना अनुभव बताते हैं, पहले पहले वहां सेंटर्स पर बाबा के चित्र में सामने लोगों को नहीं ले जाते थे, समझते थे ये समझेंगे ये कोई इंडियन साधु बिठाया हुआ है या क्या बिठाया हुआ है, धोती पहने हुए बाबा ये क्या समझेंगे ये लोग। लेकिन जब उनको ये अनुभव हुआ कि जो लोग आके बैठते हैं हमारी बात उनको कोर्स करा रहे हैं और वो कोर्स को नहीं सुन रहे और चित्र को देखे जा रहे हैं, और चित्र को देखते देखते ही कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए और बाद में वो बताएंगे कि ये कौन है, ये तो हमारे अपने कोई है, हमारी आत्मा इनके साथ बोल रही थी, हमें कुछ प्राप्त हो रहा था इनसे, इनका हमें विशेष परिचय दीजिए। तो इसलिए जो सेवा का एक बहुत बड़ा रूप बाबा ने बताया, जितना हम तपश्चर्या करेंगे, साधना करेंगे स्वयं त्याग के साथ साथ, उतना हमारी सेवा में वो बल आएगा कि जो हम बोलेंगे, जो हम नेत्रों से लोगों को निहाल करेंगे और बाबा को याद करके जो हम लोगों को उन वाइब्रेशन से आंतरिक सुख देंगे, सेवा का जो एक लास्टिंग फल होगा, लास्टिंग इम्प्रेशन जो होगा वो ये होगा। बल्कि हम तो ये कहें कि जैसे कोई डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाता है और उससे पहले नीडल को स्टेरिलाइज करता है, योग में जब हम बैठते हैं, योग युक्त होकर जब किसी को ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो एक प्रकार से हमारी अपनी आत्मिक स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगर उस नीडल को स्टेरिलाइज ना किया जाए, किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो आपको मालूम है कि वो नुकसानदेह भी हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते थे कि आप बच्चे अगर ठीक तरह से योग युक्त होकर किसी को नहीं समझाएंगे तो आपके जो संस्कार हैं उसका इन्फेक्शन, जैसे वो शारीरिक इन्फेक्शन होता है फिजिकल, ये आपका इन्फेक्शन हो जाएगा दूसरों को। तो बाबा का कहना ये हमेशा रहा कि कोई आता है आपसे कोर्स करने, योग सीखने या परिचय लेने, तो पहले दो मिनट बाद में बोलो, साइलेंस में बैठ जाओ, बाबा को याद करो, आत्मिक स्थिति में आओ। जब स्वयं सोचो कि अब मैं सीट में सेट हूं, अब मेरी अपनी स्थिति वैसी है, तब बोलना शुरू करो। केवल वाचक ज्ञानी पंडित बनकर अगर किसी को समझाओगे तो उसका फल नहीं निकलेगा। अगर आप पहले स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर और शिव बाबा को याद करके अपने उस आनंद की स्थिति में होंगे, फिर किसी को बाबा की महिमा करेंगे तो उसके मन को वो लगेगी, उसको टच होगी, बाबा भी आपकी मदद करेगा, उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और शुरू करने से पहले अपने मन में बाबा से ये बात करो, बाबा इसकी भी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करो, बाबा आज ये मेरा भाई आया है ये भी आपसे वर्षा प्राप्त करे, जब आपके मन इस प्रकार से द्रवित हो जाएगा शुभ भावना से, शुभ कामना से, ऐसी स्थिति से आप उस आत्मा को निहारते हुए कि हाउ यू फील कि आपका इतना लॉन्ग लास्ट न्यूली फाउंड, जिसको ये विदेशी भाई कहते हैं कि सिक्की लद्दा, ये भाई आपका इतने वर्षों से खोया हुआ आया है अपने बाप के पास, और अगर आज इसको ये ज्ञान समझ में ना आया, पता नहीं फिर कब आता है, हमेशा के लिए ये परमात्मा से फिर बिछड़ जाएगा, और ये चांस बार बार तो आता नहीं, ये बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, वो ऑपरेशन भी जो स्थूल किया जाता है इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एक जन्म का कंसर्न होता है, ये तो अगर वो ज्ञान से गया तो जन्म जन्मांतर के लिए गया, अगर हमने ऑपरेशन ठीक नहीं किया तो इस आदमी की मृत्यु तो कल भर के लिए होगी, तो कितना एक सावधान होने की जरूरत है। बल्कि बाबा ये हमेशा कहते हैं कि अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको ये कहो कि हमसे बड़े और हैं, हम पूरा नहीं जानते, हमने आपको समझाया तो जरूर है लेकिन हम बहुत छोटे हैं अभी इसमें, बच्चे इस कहने में तुम्हारी कोई कमी नहीं होती कि दूसरे का नुकसान तो नहीं होना चाहिए, आप किसी बात से किसी को कन्विंस नहीं कर पाए तो वो बेचारा टूट जाएगा, उसको ये कहो कि हमसे बड़े अभी और हैं जो आपको और इस बात को समझाएंगे, कोई बात नहीं अगर हमने नहीं ठीक प्रकार से समझाया तो हम आपको उनसे मिलाएंगे ताकि उस बेचारे का कल्याण हो। बाबा कहते हैं हट्टी तो ये एक है, दूसरी हट्टी इस तरह की, इस सौदे की तो है नहीं दुनिया में, अगर यहां से वो लौट गया तो बेचारा बाबा के घर में आके खाली हाथ से लौट गया, ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सेवा के साथ ये त्याग और तपस्या की जो बात है, इसका अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि ये बैलेंस भी ठीक चलता चलेगा और हमारी स्व उन्नति भी साथ साथ होती जाएगी। बाबा का बल्कि यहां तक कहना था कि जब सेवा स्टार्ट करो वो इससे ही करो। जब हम जा रहे थे विदेश यात्रा में पहली दफा, तो बाबा ने हमें जो और शिक्षाएं दी थी वहां एक बात ये कही थी, जब कभी बाहर किसी वक्त सेवा पर जाओ पहले बाबा के पास बैठ के बाबा से बात कर। एक दफा का हम आपको जिक्र बताएं, वहां के सेक्रेटरी जनरल से हमारी अपॉइंटमेंट थी 1971 की बात, और इन दिनों क्या नाम है उनका, एक बुद्धिस्ट जो बर्मा के थे वो यू था, वो सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे हमारी अपॉइंटमेंट थी, कुछ हम उनके लिए सौगात ले गए थे वो भी उनको देनी थी। तो तैयार होने में जहां चार पांच व्यक्ति होते हैं, एक तैयार होता है तो दूसरा कहता है एक मिनट ठहरो बस मैं अभी आता हूं, तीसरा कहता है बस मैं अभी तैयार, एक पर्स ही उठाना है चलना है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, संगठन में एक दूसरे के लिए रुकना पड़ता है, तो हम लोग रुके रहे, किसी को टाइम होने में तैयार होने में लगा, दूसरे को लगा, तो हम लोग 10-12 मिनट 15 मिनट लेट हो गए। लेट हो गए तो हम संगठित रूप से बाबा की याद में सब बैठ के जाते थे, ये हमें इंस्ट्रक्शन थी। उस दिन ये हो गया कि देर हो गई है अब तो चलना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे अपॉइंटमेंट का टाइम निकल जाएगा। और बात ये थी कि टैक्सी तो वहां बड़ी कॉस्टली होती है, हम लोग जब पहली बार गए थे सेंटर्स तो थे नहीं, और इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी देती है कितना है जब कोई विदेश में जाता है, बहुत थोड़ी सी करेंसी देती है, तो टैक्सी की बजाय हम लोग बाई ट्रेन जाते थे। अब बाई ट्रेन जाएंगे, अगर एक ट्रेन हमने मिस कर दी दूसरी ट्रेन मिस कर दी, पहले ट्रेन से जाओ फिर वहां से नजदीक से जाके टैक्सी लो, तो हमारी तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए चलो रस्ते में ही याद में बैठ जाएंगे अभी चलो, चल पड़े। नीचे जब उतरे, कई मंजिला मकान होते हैं आपको पता है, लिफ्ट पहले लिफ्ट ही मुश्किल मिलती है, कई लिफ्ट में आते जाते हैं लोग, लिफ्ट भी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, तो जितना हमने टाइम सेव करने की कोशिश की पहले तो हमारा टाइम खोटी होता गया, खराब होता गया, लेकिन जब उससे क्या होगा सबका मूड थोड़ा फर्क पड़ता गया कि वी आर ऑलरेडी लेट, सीरियस हो गए सब कि पता नहीं हम टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। फिर जब नीचे उतरे सब, तो जिस जिसके जिम्मे जो जो चीज थी, मैंने कहा भाई सब चीज देख लो है तो सही, कोई कहता है ओहो ये तो मैं भूल गया, दूसरा कहता है अरे अरे एक चीज तो मुझे भी लानी है, तीसरा कुछ और कहता है, चार पांच व्यक्ति थे हम, फिर वापस जाना पड़ा। अब इतने मंजिल पर फिर लिफ्ट लो, फिर वापस जाओ, और वहां के दरवाजे खुलते हैं कईयों के आसानी से, कईयों के बड़ी कठिनाई से। न्यूयॉर्क में तो चार चार पांच पांच तरीके से दरवाजे बंद होते हैं ताकि कोई खोल ना ले, जब तक किसी का अभ्यास ना हो दरवाजा खोलने में ही टाइम लग जाता है, सिर्फ एक ताला नहीं खोलना होता, और एक हाथ से एक चीज को पकड़ो, दूसरे को इस तरह से पकड़ो, तीसरे को इस तरह से पकड़ो, तब कहीं जाके खुलता है, या तो दो तीन व्यक्तियों खोलने वाले। तो बड़ी मुश्किल से हमने वो खोलने खोलने में ही, जब आदमी कंफ्यूज हो तो और ज्यादा टाइम लगता है, जब हम गए लेट हो गए, वी लॉस्ट द अपॉइंटमेंट। और फिर हम उसके सेक्रेटरी जनरल से मिलने की बजाय जो उनका चीफ ऑफ द कैबिनेट था उससे मिले, उसको सब कुछ दिया। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम भोग लगाते थे, हमारे साथ एक संदेश बहन भी थी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपने आज्ञा का पालन नहीं किया। बाबा आपकी मदद करता, जब आज्ञा का पालन करते सब काम जरूरी थे, और बाबा की याद में बैठ के जाने का जो नियम था आपने सोचा इसमें से टाइम सेव करें हम, दिस इज समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। बाकी सब चीजें कंघी देने में दो मिनट ज्यादा भी लगा दिए किसी ने, और किसी ने शीशे में अपना चेहरा देखा, ठीक हूँ सेक्रेटरी जनरल के सामने जा रहा हूँ, जरा मैं भी कुछ हूँ, थोड़ा मुझे भी आई शुड बी लाइक हिम। हर एक ने अपने उसको देखने की कोशिश की, लेकिन जो बाबा ने बात बताई थी पहले से कह के भेजा था, पहले से वार्निंग दी थी, कॉशन दी थी, बच्चे जब सेवा पर जाना याद में बैठ के जाना, कितनी महत्वपूर्ण सेवा में आप इस बात को एक उमिट करके जा रहे हैं, तो कर लो, देख लो तजर्बा क्या उसका नतीजा हुआ। वी मिस्ड आवर गोल, ऐसे जीवन में कई बार हमने देखा। तो बाबा को याद करते हुए कार्य करते हैं, याद करके काम शुरू करते हैं, और ये समझते हैं कि बाबा ही करण करावन हार है, हम तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस आत्मा का भक्ति का पार्ट पूरा हो गया है, अब इसका ज्ञान में आने का पार्ट का टाइम आ गया है, बाबा इसको कहीं से ढूंढ के लाया है, इसके निमित्त बाबा ने यहाँ सेवा स्थान खोला है, हमको बाबा ने केवल एक निमित्त बनाया टिकलू टिकलू करने के लिए, बोलने वाला तो बाबा ही है, और इसका भाग्य बनने का समय आ गया है, भाग्य विधाता तो वो है। जब ये बात हम समझते हैं तो फटाफट सफलता होती है, और जब हम ये समझते हैं, हम तो समझाने में बड़े कुशल हैं, सब लोग यही कहते हैं ये बहुत बढ़िया समझाते हैं, हमको कहा गया खास कि तुम इनको समझाना, हम ही समझाने वाले हैं इनको, और इत्यादि इत्यादि अपने बारे में हम कुछ बहुत कुछ समझ लेते हैं, शिव बाबा को एक तरफ रख देते हैं और स्वयं ही सामने आ जाते हैं, तो उसके आगे से भी शिव बाबा हट जाते हैं, हम ही सामने रह जाते हैं, हड्डी मांस के पिंजर हम ही सामने रह जाते हैं, और जो लाइट और माइट के शिव बाबा हैं वो फिर बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे तुम करो, ऑल राइट गो अहेड वेल। उसका नतीजा हम देखते हैं, हम पत्थर के साथ सिर मारते हैं, सिर भी फोड़ते हैं, पत्थर तो फूटता नहीं, वो आदमी बिना समझे चला जाता है, हम ही कहते हैं कि ये आदमी कई दिन तक आया कोर्स किया फिर ये आता क्यों नहीं। उसकी वजह यही होती है, बाबा ने हमारे पास कितनी मेहनत से उस आत्मा को प्रेरित करके भेजा, और हमने बाबा का लाया हुआ आदमी कोई एक प्राइम मिनिस्टर किसी को रेकमेंड करके आपके पास भेजे और आप उसको ओवरलुक कर दें। बाबा ने हमें भेजा सेवा करने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए, उसका भी भाग्य जगाने के लिए, और चूंकि हम तपस्या मूर्त नहीं, त्याग मूर्त नहीं, मान और शान में आ गए, अपनी इच्छा और तृष्णा में आ गए, और अपने ही पन में मैं हूं कुछ ये इस अभिमान में आ गए, सेवा अभिमान में आ गए, समझते अपने आप को कुछ, तो बाबा कहते थे मेरे बच्चे ज्ञानी होने के बावजूद, योगी होने के बावजूद, कई दफा मुरली में आप पढ़ेंगे, दे अभिमानी है। अभी तक 25% उनमें योग की जो रूहानियत आनी चाहिए वो है। टाइम हैज पास्ट, उस जमाने में और अब में अंतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अभी भी ये चीज किसी मात्रा में है तो सही।